नहमिया अध्याय 13, अध्याय 13 पद 1 से लेकर 3 तक। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें ये लिखा हुआ मिला कि कोई अमोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारा परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। ये व्यवस्था सुनकर उन्होंने इसराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। वे व्यवस्था की पुस्तक में से आज्ञाओं को खोजते रहे। वे आज्ञा पालन करना चाहते थे। जब वे पढ़ रहे थे तब उन्हें ये पद मिला कि अमोनी या मोआबी कभी भी परमेश्वर की सभा में आने ना पाए, क्योंकि जब इसराइली मिस्र से प्रतिज्ञा किए हुए देश में आ रहे थे उन्होंने अन्न जल लेकर भेंट नहीं की और अपनी सीमा से गुजरने नहीं दिया। राजा बालाक ने उन्हें शाप देने के लिए बिलाम को दक्षिणा देकर बुलवाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उन्हें और उनकी संतानों को परमेश्वर की सभा में कभी मत आने देना। इसलिए उन्होंने इसराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग कर दिया। अध्याय 13 पद 4। इससे पहले एलियाशिब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, तोबिया ही था जिसने नहमिया को दीवार बनाते समय अधिक कष्ट दिए थे, लेकिन यहां याजक उसका मित्र है। अध्याय 13 पद 5। उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, मंदिर में एक जगह जहां वे अन्न बलि का सामान, लोबान और पात्र, अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश उन्हें देने की आज्ञा थी। एक कोठरी महायाजक ने तोबिया को दे दी और उसका सामान उसमें रखा ताकि वो उसके रहने की कोठरी हो जाए। यही था जिसने नहमिया को कठिन समय दिया था जब वो भवन की दीवार बना रहा था। इस याजक का वो मित्र था, उसने उसका आदर करते हुए उस मंदिर में कोठरी रहने को दी। हम पढ़ते हैं अध्याय 13 पद 6। परंतु मैं उस समय यरूशलेम में नहीं था। जब ये सब हो रहा था मैं वहां नहीं था, वो फारस चला गया था और नहीं जानता था कि याजक ने तोबिया को मंदिर में कोठरी रहने को दी है। इसलिए उसने कहा, इस समय मैं यरूशलेम में नहीं था। अध्याय 13 पद 6 में आगे लिखा है, क्योंकि बाबेल का राजा अर्थशत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी। यरूशलेम में 12 वर्ष तक दीवार का पुनर्निर्माण करके सभी चीजों को ठीक करके नहमिया फारस को लौट गया और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। बहुत समय के बाद ठीक पता नहीं फारस के राजा ने नहमिया को यरूशलेम लौटने की आज्ञा दी। जब वो यरूशलेम को लौटा तो क्या देखा? वो तोबिया जिसने परमेश्वर के काम में अड़चने डाली थी, परमेश्वर के मंदिर में शानदार कोठरी में रह रहा है। याजक ने उसे ये कोठरी दी थी। उन्होंने कोठरी में से अनाज और दूसरी चीजें बाहर निकाल दी और उसने कहा, भाई अब तुम इसमें जाकर रहो। अध्याय 13 पद 7 से लेकर 9 तक। और मैं यरूशलेम को आया जब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या ही बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। वो वापस आकर मंदिर को साफ करता है। उसने देखा तोबिया ने कोठरी बना ली है। उसने उसको उसके सामान के साथ बाहर कर दिया। अध्याय 13:10। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया और इस कारण काम करने वाले लेविय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। अब यहां देखिए, अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि वे सब व्यवस्था की पुस्तक का पढ़ा जाना ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने समर्पण भी किया था, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम वाचा लिख लेते हैं, हम छाप करते हैं, दशमांश देंगे, हम मंदिर को सुधारेंगे, हम चांदी देंगे प्रतिवर्ष और ऐसा ही करते रहेंगे। परमेश्वर हम तेरी व्यवस्था मानेंगे, विश्राम दिन मानेंगे। परंतु अधिक समय नहीं हुआ कि वे अपने समर्पण से फिर गए। ये कैसी विचित्र बात है कि हम अति शीघ्र अपने समर्पण और अपनी प्रतिज्ञाओं से जो हम परमेश्वर से करते हैं चूक जाते हैं। हम अपनी शपथ कैसी आसानी से तोड़ देते हैं। जबकि हम शपथ खाते हैं तो हमारे मन निष्ठावान होते हैं। मैंने भी कितनी बार शपथ तोड़ी, बचपन से आज तक, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, उचित काम करने के लिए मैंने शपथ खाई। हे परमेश्वर, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, इस सप्ताह मैं तेरे लिए ही जीऊंगा, मैं तेरी ही सेवा करूंगा। परंतु होता क्या है? ऐसा कभी होता ही नहीं। आने वाले रविवार मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराने लगता है। मुझे फिर से उद्धार पाना है, तब मैं फिर प्रतिज्ञा करता हूं, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, इस सप्ताह मैं ऐसे नहीं करूंगा, प्रभु इस सप्ताह सच में तेरी सेवा करूंगा। ये मैं मन से कहता था, मेरा मन में सच्चाई थी। येशु ने पत्रस से कहा, मती 26:41, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये वास्तव में सच है। मेरी आत्मा तो तैयार थी, मैं प्रभु से प्रेम करता था, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता था, परंतु मेरा शरीर दुर्बल था। मुझ में करने की इच्छा थी परंतु कैसे करूं ये नहीं जान पाया। मेरे मन में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा थी और मन से तो मैंने प्रभु की सेवा की, परंतु शरीर से मैं उसे निभा नहीं पाया। शरीर दुर्बल था, मेरा मन और मेरा मस्तिष्क प्रभु से प्रेम करता था और मैं उसकी सेवा करना चाहता था। मैंने अनेक प्रतिज्ञाएं की परंतु इसराइल के वंशजों के समान चूकता ही गया। प्रभु, हम ऐसा करेंगे, हम वाचा बांधते हैं, हम समर्पण करते हैं। मैंने वाचा पर हस्ताक्षर भी किए। ग्रीष्मकालीन शिविर में हम लोग परमेश्वर से वाचा बांधते थे और उस पर हस्ताक्षर भी करते थे। मैं इस पूरे साल मसीह यीशु के लिए जीवंत जीवन जीऊंगा। मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा, मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कभी शैतानी जगहों पर नहीं जाऊंगा आदि। इस प्रकार कैंप फायर के चारों ओर खड़े होकर आंखों से आंसू बहाते हुए मैं कहता, हे परमेश्वर, इस साल मैं तेरी सेवा करूंगा। अब देखिए, मुझ में इच्छा थी, ये मेरी मनोकामना थी, परंतु इसको कार्य रूप देने में समस्या खड़ी हो गई कि कैसे करूं। मैं उस दिन के लिए परमेश्वर का बहुत आभारी हूं जिस दिन मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पा लिया। परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में उसकी प्रतिज्ञाओं और वाचाओं के प्रति मेरी निष्ठा के कारण नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण बरसाई गई। परमेश्वर के कार्य, उसका अनुग्रह और उसकी दया का अनुभव मैंने अपने जीवन में पाना आरंभ कर दिया। प्रतिज्ञाएं मत करो, मैंने ये पाया है कि प्रतिज्ञा करना उसके अनुग्रह पर नहीं, मेरी देह पर भरोसा है। मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूं। मेरी प्रत्येक प्रतिज्ञाएं परमेश्वर को ये दर्शाती थी कि मुझे अपनी देह पर अधिक भरोसा है, जैसे कि मैं कह रहा हूं, प्रभु मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। मैं चाहता भी था, परंतु मेरा शरीर दुर्बल है। मैं ये जानता हूं कि मुझ में, मेरे शरीर में एक भी अच्छाई नहीं है। अतः मैं उन लोगों की सच्चाई पर जिन्होंने वाचा पर मोहर लगाई चुनौती देना नहीं चाहता। परमेश्वर, हम तेरी सेवा और सब करेंगे। लेकिन नहमाया अधिपति लौट गया और शीघ्र ही लोग पुरानी रीतियों पर चले गए। उन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया और लेवी अपने खेतों में चले गए। उन्हें जाना पड़ा कि अपना जीविकोपार्जन करें और इससे मंदिर की आराधना बंद हो गई। अतः नहमया ने कहा, अध्याय 13 पद 11 से 13 तक, तब मैंने हाकिमों को डांटकर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। और मैंने भंडारों के अधिकारी शोलमिया याजक और सादोक मुंशी के और लेवियों में से पदया को और उनके नीचे हनान को, जो मतन्या का पोता और जाकुर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। जिनको उसने कोषाध्यक्ष खजांची बनाया, उनके नाम यहां दिए गए हैं। अध्याय 13 पद 14 से लेकर 16 तक। हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना का विषय किए हैं, उन्हें मिटाना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लाते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम के दिन को बेचा करते थे। उन्होंने पहले कहा था, प्रभु हम विश्राम दिन को कुछ न खरीदेंगे, हम तेरे विश्राम दिन को मानेंगे। यहां उसका उल्लंघन किया। अध्याय 13 पद 17 से लेकर 19 तक। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखे ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। सो जब विश्राम वार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए, और ये भी आज्ञा दी कि वे विश्राम वार के पूरे होने तक खोले ना जाए। तब मैंने अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम वार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए। नहमया ने विश्राम दिन के उल्लंघन का सुधार और विश्राम दिन की पूर्व संध्या को फाटकों को बंद करके ताला लगाया और जब तक विश्राम दिन खत्म नहीं हुआ फाटक नहीं खोले और सब लेन देन बंद करवाया। ये आज भी यहूदी शुक्रवार को करीब 2 बजे से कार्य करना बंद कर देते हैं, जैसा कि नहमिया ने ठहराया था। वे विश्राम दिन के लिए तैयारी आरंभ करते हैं, वे रात होने से पहले तैयारी पूरी कर लेते हैं। करीब दोपहर 2 बजे वे अपनी दुकानें और काम बंद कर देते थे और सूरज डूबने से पहले वे घरों में इकट्ठे हो जाते थे। माताएं अपनी छोटी प्रार्थनाएं करती थी और विश्राम दिन की बत्ती जलाती थी। इस प्रकार वे सबत की आराधना आरंभ करते थे। आज भी वे सबत दिन को लागू करके यरूशलेम के कुछ भागों में यातायात रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वे सड़कों पर मार्ग अवरोधक खड़े कर देते हैं। यरूशलेम में कुछ सड़कें हैं जहां आप विश्राम दिन पर गाड़ी नहीं चला सकते। कुछ लड़के पत्थरों के ढेर रखते हैं और यदि आप विश्राम दिन पर गाड़ी चलाना चाहें तो गाड़ी पत्थरों से तोड़ दी जाती है। ये भी सबत के दिन का उल्लंघन है कि आप बोझ उठाएं, पत्थर फेंके, परंतु वे ऐसा करना धार्मिकता समझते हैं। नहमया सबत का दिन लागू करता था। उसने कहा, शाम को अंधेरा होने से पहले फाटक बंद कर दो और ताला लगा दो जब तक सबत खत्म ना हो। अध्याय 13 पद 20 से लेकर 22 तक। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बार टिके। जब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहर पना के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए ये भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। परमेश्वर, मेरे अच्छे कामों को याद कर। अध्याय 13 पद 23 से लेकर 25 तक। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी, और उनके लड़के बालों की आधी बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और ना अपने लिए वो अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। नहमिया ने सुधार किया, उनके बाल नुचवाए, कोसा और वे श्रापित हुए। उन्होंने कहा, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे और यदि ऐसा करें तो श्रापित हो। उन्होंने शपथ खाई कि यदि हम ये आज्ञा तोड़े तो जैसे पहले अध्याय में कहा था, श्रापित हो। अब फिर उन्होंने उल्लंघन किया तो नहमिया ने श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि यदि हम उल्लंघन करें तो श्रापित हो। इसलिए उसने उन्हें श्राप दिया, पिटवाया और उनके बाल नुचवाए, उन्हें सिखाया और कहा। अध्याय 13 पद 26। क्या इसराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वो अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। सबसे बड़ी समस्या अन्य जाति स्त्रियों की थी और सुलेमान जैसा बुद्धिमान मनुष्य अन्य जाति स्त्रियों से प्रेम करने के कारण नाश हुआ। उसी सुलेमान ने नीति वचन में इन स्त्रियों के प्रति जो अपने होंठों से छलती है और आंखों से झपकी लेती है कहा, क्योंकि उसका द्वार नरक का द्वार है, वहां मत जा। वो कहती है, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। बहुत शक्तिवान मनुष्य बर्बाद हो गए। सुलेमान शायद अपने निजी अनुभव लिख रहा था। बहुत बुद्धिमान परमेश्वर से आशीषित पर अन्य जाति स्त्रियों ने बर्बाद किया। उसके पतन का कारण वे स्त्रियां थीं। ये उसका श्राप और गिरना था जिसने उसको बर्बाद किया। नहमिया उन्हें याद दिलाता है, तुम देखो तुम सहन नहीं कर सकते। एक मनुष्य सुलेमान की तरह बुद्धिमान जो अन्य जाति स्त्रियों से नष्ट हो गया, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। अध्याय 13 पद 27 और 28। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पार करें? और एलियाशिब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामाद था। संबलत और तोबिया जिसने नहमिया को बुरा समय दिया। अध्याय 13 पद 28 से लेकर 31 तक। इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनकी हानि के लिए याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा का तोड़ा जाना स्मरण रख। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेव्य की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट की आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। नहमिया एक असाधारण या ध्यान में रखने योग्य और आदरणीय व्यक्ति था। मैं उसे पसंद करता हूं। उसकी आत्मा, उसका आदर्श, उसका परमेश्वर की ओर समर्पण, उसकी आज्ञाकारिता, उसे मिलना अद्भुत होगा।